वाले बाबा से प्यारा मंत्र मिला हमको, हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला।
जो होता अच्छा होता है सब में है अच्छाई, सुंदर तुम ये खेल बना है ध्यान से खेलो भाई।
जो होता अच्छा होता है सब में है अच्छाई, सुंदर तम ये खेल बना है ज्ञान से खेलो भाई।
दोष न देना किसको प्यारे हुआ भले
करो भला, सोचो भला करो भला।
परिवार है अपना कोई नहीं है पराया, जैसी नजर से देखा हमने वैसा इसको पाया।
सारा जग परिवार है अपना कोई नहीं है पराया,
सोचो
भला करो भला।
ओम शांति। एक बार फिर मुस्कुरा कर बोलेंगे ओम शांति। कितना अच्छा गीत आप सुन रहे थे, सोचो भला करो भला। लेकिन सोचो भला के लिए भी कितनी ताकत चाहिए, कितनी शक्ति चाहिए। अब उस सोचो भला में अर्थात शुभ चिंतन में किस तरह की मन की ताकत चाहिए, शुभ चिंतक बनने की, शुभ चिंतक रहने का सहज पुरुषार्थ क्या है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि किसी की छोटी सी बात भी बहुत चुभ जाती है और बहुत मुश्किल लगता है उसको भूलना। तो ब्राह्मण जीवन की क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बने रहने का क्या पुरुषार्थ करें, इस विषय पर आदरणीय दीदी जी का बरसों बरसों का अनुभव है कि किस तरह सहज पुरुषार्थ हमें आगे बढ़ाता है। हम बचपन से आपकी क्लासेस सुन रहे हैं और कितनी बातें आप बाबा के साथ की, दादियों के साथ की, गुलजार दादी के साथ के अनुभव की, जिसमें कोई अपनी कमी कमजोरी भी है तो वो कितने स्पष्ट रूप से सबके सामने बताते थे कि किस तरह से गुलजार दादी की किसी एक बात से आपके जीवन में, आपके पुरुषार्थ में क्या शिफ्ट आया, कितना वो ऊंचाई पर पहुंच गया। तो इस तरह के बहुत सरल चित, बहुत इंटेलिजेंट, जो कि बचपन में अपने उस पढ़ाई में भी आप बहुत कुशाग्र बुद्धि रहे और इस पढ़ाई में भी बहुत बहुत इंटेलिजेंट रहे, आदरणीय आशा दीदी जी का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बाबा के ज्ञान को आपने बाबा के सामने ही समझा, साकार बाबा मम्मा की पालना ली, आपका परिवार ज्ञान में था तो उस तरह से आपको बहुत प्यारा सानिध्य मिला बाबा और मम्मा का। तो उनके सामने से ही आपके जीवन में जो निखार आया वह आज सभी को दिखाई देता है। कहते हैं जो देवी सिद्ध होती है, तो हम जब कुमारियों की क्लास किया करते थे आपसे और इस तरह की बहुत सी वो क्लासेस जो टीचर बहनों को निखारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपसे करते थे, तो पता लगता था कि आपके बोल, आपकी भावनाएं कितनी सिद्ध है, जिन्होंने इस जीवन में आपको सबके बीच प्रसिद्ध भी किया। विदेश सेवा में जो शुरू में बाबा ने भेजा तो उसमें प्रारंभ से ही 3-3 महीने वहां रहकर आपने सेवा की, उस वक्त जब सब कुछ वहां चाहिए था, जहां कोई सुविधाएं नहीं थी, जहां अभाव था, अभी सेवा बढ़ानी थी, ऐसे समय पर आप विदेश में जा जाकर रहकर भी सेवा करते रहे। अब तक भी भारत के विदेशों में जितने भी सेवा केंद्र है, अधिकतर आपके द्वारा कितने सुंदर वो प्रकाशित हैं, आलोकित हैं। हर एक के जीवन को आलोकित करना आपकी विशेषता है। ओआरसी में रहते हुए निमित्त मात्र ही समझेंगे, क्योंकि ओआरसी में जाने से पहले हमें फोन करके पूछना पड़ता है, आशा दीदी हैं, मिलेंगे वहां, तो हम उस हिसाब से कार्यक्रम बनाते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर, बहुत विशाल, बहुत रूहानियत से भरा रिट्रीट सेंटर, जहाँ आप जाएंगे तो अक्सर आशा दीदी बहुत प्यार से अभिवादन सबका स्वागत करते हैं। और उसके अतिरिक्त वहाँ से रहते हुए भी आप देश विदेश में हर समय सेवा में उपलब्ध हैं। प्रशासक वर्ग के आप चेयरपर्सन हैं और दिल्ली जोन की वरिष्ठ दीदियों में, जो आजकल जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं, उन 3 वरिष्ठ दीदियों में से आप एक हैं। प्योरिटी पेपर के आप सह संपादक रहे, 1973 से ही आपकी ये रूहानियत की आध्यात्मिकता को आगे बढ़ा, 73 से ये यात्रा शुरू हो गई थी, लेकिन साकार बाबा के समय से ही आपका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा, स्पेशली कुमारियों और टीचर्स के लिए। आज हम सब के लिए आपकी क्या शुभ भावनाएं हैं, कैसे शुभ चिंतक बनकर रहें, वो हम आपसे सुनेंगे। आप हमारे बहुत अच्छे, बहुत आदरणीय दीदी हैं, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं।
ओम शांति। कविता बेन ने बहुत लंबा चौड़ा परिचय दिया, लेकिन मुझे अच्छा लगा। क्योंकि अच्छी अच्छी बातें जब ये कह रही थी तो मेरे मन में अच्छी अच्छी यादें उभर के आ रही थी। तो मैं सोचती हूँ कि उन यादों से ही आरंभ करते हैं। बाल्यकाल में जब मम्मा और बाबा से मुलाकात हुई तो पहली मुलाकात मम्मा के साथ थी, स्वचिंतन शुभ चिंतन, मम्मा का कैसे काम आता है। तो लौकिक माँ भोजन बनाने में बहुत प्रवीण थी और मम्मा का भोजन बनाती थी, सारा दिन सेंटर पर ही रहती थी। कानपुर सिविल लाइन्स की बात है और हम उस समय 5 भाई बहन थे, छोटे छोटे थे हम लोग। तो मम्मा ने देखा कि ये निर्मला सारा दिन सेंटर पर रहती है, तो मम्मा ने गंगे दादी को पूछा कि सारा दिन ये यहां रहती है, इसके बाल बच्चे नहीं है? तो गंगे दादी ने कहा, मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। मम्मा ने कहा, क्या करती है? तो कहा, मम्मा ये उनको ताले में बंद करके आती है। मम्मा ने कहा, ताले में बंद करके आती है क्योंकि दिन में उनकी बुआ हमारे पास रहती थी जो भी ज्ञान में थी, लेकिन सवेरे शाम वो भी क्लास में जाती थी, तो जब वो जाती थी तो हम लोग ताले में होते थे। तो मम्मा ने कहा, ताले में बंद करके आती है, मैं ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही? तो मम्मा ने हमें भोजन पर निमंत्रण दिया दूसरे दिन ही। हम भाई बहन मम्मा के निमंत्रण पर मम्मा के साथ भोजन करने के लिए पहुंचे। मम्मा ने अपने हाथों से हमको भोजन कराया, खुद एक एक गिट्टी खिला रही थी। और मम्मा ने कहा, जो बात मेरे को बुद्धि में जम गई, मम्मा ने कहा, जो तुम मदद अपनी माँ को अभी देती हो, बाबा तुम्हें इसका उजूरा बहुत देगा। वो दूरदर्शिता, मम्मा का वो शुभ भाव, पतवार की तरह काम करता हुआ आज इस स्थिति पर लाया है। दूसरी बार मम्मा से जब मुलाकात हुई तो मम्मा मुझे एक सेंटर पर भेज रही थी, फरुखाबाद। मैंने 10वीं पास की थी। तो मम्मा ने कहा, भेजने से पहले माता पिता भी साथ में थे, और भेजने से पहले मम्मा ने कहा, तुम इतनी मिर्ची खाओगी? मैंने कहा, खा लूंगी। मम्मा ने कहा, मटका भर के पानी पियोगी? मैंने कहा, पी लूंगी। मम्मा ने कहा, शेर से डरोगी तो नहीं? मैंने कहा, नहीं डरूंगी। लेकिन मम्मा ने हाथ से ऐसे किया और मैंने आंख झपक ली। तो मम्मा ने कहा तुम तो डर गई। तब मम्मा ने कहा परीक्षाएं आएंगी, पेपर आएंगे, लेकिन अगर बाबा को साथ रखोगी तो सब परीक्षाएं पार कर लोगे। वह मंत्र जो मम्मा ने कान में फूंका, शुभ चिंतन और स्व चिंतन दोनों ही इसमें समाये हुए थे। बाबा के हम सब बच्चे बने हैं किस लिए? बाबा कितना शुभ कार्य कर रहे हैं, कौन सा शुभ कार्य कर रहे हैं? नई दुनिया की स्थापना का कार्य, जिसको स्वर्ग कहते हैं, वह दुनिया जो हम सब चाहते हैं, वह दुनिया जिसे हम बाबा के साथ क्रिएट कर रहे हैं, शुभ कार्य है ना? शुभ कार्य है ना? हाँ जी है ना जी। जब कभी, अब आप सब घर गृहस्थ में रहने वाले हो, जब कभी घर में शुभ कार्य होता है, कोई भी, आपका गृह प्रवेश है, आपकी नई दुकान है, आपके घर में शादी है, जिसको आप शुभ कार्य कहते हो, उस समय हर एक से क्या अपेक्षा करते हो? कोई नाराज हो जाए तो उसको क्या कहते हो? भाई अभी ये बात ना करो, ये शुभ काम होने दो, बाद में बात करना। ऐसे करते हैं? ये शुभ कार्य है, अभी इसमें कोई विघ्न नहीं डालो, इसको होने दो, बाद में देखा जाएगा। ऐसे ही करते हैं? ऐसे ही करते हैं? कोई भी शुभ कार्य में कुछ भी अशुभ हम होने नहीं देते, चाहे संकल्प है, चाहे किसी के बोल हैं, हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, शुभ कार्य में विघ्न नहीं डालो। तो मैं सोच रही थी बाबा कितना बड़ा शुभ कार्य कर रहे हैं, कितना विशाल शुभ कार्य कर रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना मासी का घर तो नहीं है, सारी दुनिया को बदलना मासी का घर तो नहीं है ना? आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, वैष्णव देवी जाते हैं, अन्य तीर्थों पर जाते हैं, उस समय सब प्रभु चिंतन में रहते हैं और कहते हैं मैंने तो देखा नहीं है, सुना ही है, वहां कोई पत्थर है जिसके बीच में से निकलना होता है, और वे आत्माएं निकल पाती हैं जो बिल्कुल प्रभु स्मृति में होती हैं, यदि इधर उधर की बात होती है तो वो निकल नहीं पाती। ऐसा ही है ना? इसी रीति से जो नव सृष्टि का निर्माण है उसके लिए हमारा कितना शुभ चिंतन रहना चाहिए, ये एक परहेज है। अगर हम परहेज के रूप से, व्रत के रूप से इस चीज को लें, और ऐसा संभव है, हमारी यज्ञ के इतिहास में एक बहुत ऐसी आत्मा आई जिसने सेवाओं में बहुत परिवर्तन लाया, नया चैप्टर खोल दिया, और वह थे श्री केवी के राजू, जो हैदराबाद के नागार्जुन फर्टिलाइजर्स के एमडी थे। उनको दादी जी की दृष्टि से उनका जन्म हुआ। कॉन्फ्रेंस समाप्त हो चुकी थी बिजनेसमैन की, वो दादी से मिलने के लिए बैठे, रात देर हो गई थी, सबने कहा दादी नहीं मिल सकती, कल सवेरे वो जा रही है, वो नहीं मिल पाएंगी आपको। कितने बजे जा रही है? इतने बजे जा रही है, 4 बजे। वो आत्मा 4 बजे पहुंची, दादी जी की दृष्टि ली और उसका जन्म हुआ। मधुबन आए और जितनी भी मधुबन में उनको शिक्षा मिली, उन सबको उन्होंने मैनेजमेंट की भाषा में बदला, और पहला मैनेजमेंट जो आज बहने सारी वर्ल्ड में करा रही हैं, पहला चैप्टर उन्होंने खोला नागार्जुना फर्टिलाइजर्स में। उसके बाद हमारी सेवाओं का रूप बदल गया। उस आत्मा की विशेषता ये थी, कन्याओं के ट्रेनिंग में उन्हें मैंने निमंत्रण दिया दिल्ली में। अपने अनुभव में उन्होंने बताया, जिस दिन से, सुनने वाली बात, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है उस दिन से लेकर आज दिन तक मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा है, सदा पॉजिटिव। ये उन्होंने एक व्रत ले लिया और उस व्रत के कारण इतना बड़ा परिवर्तन उन्होंने करके दिखाया। शुभ चिंतन क्या कि मेरे इंडस्ट्री के लोग अच्छी श्रेष्ठ धारणा वाले बन जाएं, हर एक आत्मा जो वहां कार्य करती है उसे अच्छी बुद्धि मिले, अच्छी सोच मिले। इस प्रकार उन्होंने पूरा उसे परिवर्तन किया। मीठे बाबा, हम सबसे यही अपेक्षा रखते हैं। बाबा ने हम बच्चों को कितना सुंदर मन दिया है, मन जो एक अद्भुत शक्ति है, जिसके लिए कहा गया मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन जीत जगत जीत कहावत। क्या कभी हमने सोचा, आज हम धन के ऊपर इतना अटेंशन देते हैं कि हमारा धन कैसे यूज होना चाहिए, धन वेस्ट जाए हमें स्वीकार नहीं है, लेकिन धन को पैदा करने वाला जो मन है, उस मन के ऊपर हमारा कितना ध्यान है। मन है ना, मेरा मन है, मेरा मन, मेरा मन, मेरा कहना मान रहा है। अगर हम अपनी सोच को देखें, प्यारे भाइयों बहनों, शुभ चिंतन दैवी संस्कार, अशुभ अशुद्ध आसुरियता है, किसी के बारे में उल्टा सोचना हम ब्राह्मण नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए निषेध है। जैसी कई चीजें शास्त्रों में कईयों के लिए निषेध रूप से कही गई हैं, हम ब्राह्मण योगियों के लिए अशुभ, नकारात्मक, दूसरे के बारे में उल्टा सोचना ये निषेध है। अगर हम अपनी सोच को देखें, इतना शुभ कार्य बाबा कर रहा है, मेरी सोच, मेरे संकल्प उस शुभ कार्य को संपन्न करने में कितने सहयोगी हैं। हम और तो कुछ नहीं कर रहे, बाबा ने एक मुरली में कहा है कि चलते चलते आपके अंदर अलबेलापन क्यों आ जाता है, क्योंकि शुभ चिंतन को आपने अपनी नेचर नहीं बनाया है। हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख से पैदा हुए हैं, ज्ञान से पैदा हुए हैं, हमारे चिंतन में क्या बसना चाहिए। वो अलबेलापन आता क्यों है, बाबा के जैसे और चीजों को सांस का लेना, आंख का झपकना, ये नेचर नेचुरल है ना। आपके मन की नेचर शुभ चिंतन चाहिए। व्यवहारिक रूप में कई बार भाई बहने कहते हैं, ये मेरे लिए इतना अशुभ सोचता है, इतना अशुभ सोचती है, इसके लिए मैं शुभ सोचूं। मैंने ये सवाल दादी प्रकाशमणि से किया था। मैंने कहा, दादी ये आत्मा इतना मुझे परेशान करती है, हर मेरी बात को उल्टा करती है, और आप फिर भी कहते हो कि नहीं तुम पॉजिटिव रहो, शुभ सोचो, इसके लिए मेरे से नहीं होता। आज मैं आपको बता रही हूं मेरे से नहीं होता। दादी जी मुस्कुराए। दादी ने कहा, फिर क्या करोगी, अशुभ सोचोगी। मैंने कहा, दादी मैं आपको प्रॉमिस करती हूं मैं कदापि उस आत्मा के प्रति अशुभ नहीं सोचूंगी, लेकिन शुभ भी नहीं करूंगी, शुभ भी नहीं हो सकता मेरे से। वो सारी बातें मुझे याद आती हैं, न शुभ हो सकता है और अशुभ मैं करूंगी नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूं। दादी ने कहा, तुमने अपनी गाड़ी को न्यूट्रल गियर पर लगा दिया, ना वो आगे जाएगी ना वो पीछे जाएगी। तुम मेरा कहना मानो और उसके प्रति शुभ चिंतन करो, करके देखो। दादी कहती है, कहना तो मानना है कि मैं, आप कहते हैं तो मैं कहना मानती हूं, मेरा दिल नहीं कहता, आप कह रहे हैं तो मैं कर लेती हूं। दादी ने कहा, मेरे कहने से कर। और सच, बड़ों का अनुभव होता है, वो व्यक्ति मेरा मित्र तो नहीं बना, मैंने शुभ सोचना शुरू किया, मित्र तो नहीं बना, लेकिन वो जो विघ्न डालता था वो समाप्त हो गया, अपना काम बनता है। शुभ चिंतन, प्यारे बाबा ने वो विधि दी है जिससे हम व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलना उसके हाथ में है, लेकिन उसकी सोच को चलाना वो हम कर सकते हैं। और जब व्यक्ति सोचता है, उसको मन में लगता है, तो उसमें परिवर्तन भी शनै शनै आता है। इसमें हमें चाहिए धैर्यता। कई बार हम शुभ चिंतन करते हैं परंतु अधीर हो जाते हैं। अधीरता समझते हैं ना, धैर्य नहीं रखते हैं। कभी कभी कहते हैं, मैं कहां तक सहन करूं। अरे, सहन करना कोई बुरी बात थोड़ी है, सहनशील है, सहन चरित्र है, सहन करना नैतिकता है। मम्मा कहती थी, सहन करने की कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। और दूसरी तरफ, मैं सहन कर रही हूं, मैं सहन कर रही हूं, जब आप ये बोलते हैं मैं सहन कर रही हूं, सहन कर, इसका मतलब है आप सहन नहीं कर रहे हैं। अगर आप सहन करें तो शक्ति झलकती है। मुसीबत से सहन कर रहे हो, रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, वो सहन नहीं है। तब बाबा कहता है, ये प्रश्न कि सहन कब तक करूं, कब तक धीरज रखूं, धीरज रखना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, धैर्यता तो अच्छी बात है ना, क्या हो गया। हम चाहते हैं, मैं शुभ चिंतक हूं, शुभ चिंतन कर रही हूं और इसका रिस्पॉन्स मेरे को तुरंत आ जाए, वो नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है, जो तुरंत का तुरंत आता, आपने बीज बोया तुरंत आपको फल मिल जाता है। कोई होता है जो बीज बोते हो उसकी पालना करनी पड़ती है और बहुत देर के बाद फल निकलता है, लेकिन जो फल निकलता है फिर वो निकलता ही रहता है। क्यों? धैर्यता। शुभ चिंतन, ये हमारा स्वभाव, हम असुर तो नहीं है, असुर तो नहीं है। कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण उल्टा सोचेगा, सोचेगा सच्चा ब्राह्मण फुल कास्ट ब्राह्मण, अशुभ अशुद्ध सोच ही नहीं सकता। बड़ी दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, अगर आप इनके पुरुषार्थ के जीवन की कहानी सुनेंगे, इनका जीवन का एक रूल था, नियम था, कभी भी पर चिंतन नहीं किया। ये दादियां स्वचिंतन, बाबा कितना अच्छा हम बच्चों को मुरली में कहते हैं कि चलो किसी आत्मा में 99 बुराइयां हैं, एक तो अच्छाई है, उस एक अच्छाई को ही उठा लो, 99 को छोड़ दो, एक अच्छी चीज तो देख लो, कम से कम मेरा बाबा का बच्चा तो है वो। शुभ चिंतन, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। एक आत्मा थी, सच्ची घटना बताते, बहुत अच्छी सेवाधारी, सबको खुश करने वाली, संग दोष में आके पर चिंतन की लेन देन की। अब आप जब पर चिंतन करते हैं तो केवल मौखिक नहीं होता है, आपके मन के ऊपर असर करता है। आप कितना ही कहें कि मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, 100% असर होता है। कभी ना कभी वो जो चीज आपके ब्रेन में चली गई, समय आने पर उभर के आती है, हां फलाने वक्त पर उन्होंने कहा था, देखो बिल्कुल राइट बात। तब बाबा कहता है उस आत्मा का क्या हुआ, उसके पांव यज्ञ से निकल गए, जार जार रोए, अभी मैं क्या करूं। तब उसको समझाया, पश्चाताप, परचिंतन लगता अच्छा है, बैठ के मिलकर के करते हैं। दादियां हम लोगों को कितना अटेंशन खिंचवाती थी, हम दो बहनें जाती थी, अगर वॉकिंग करके आते थे, एक बार मैं और एक बहन नक्की लेकर घूम करके आ रहे थे, दादी प्रकाशमणि दीदी 100 कदम चलती थी भोजन के बाद, हम गेट पर पहुंचे, जैसे दादी सामने से आ रही थी, दादी ने तुरंत हमको स्टॉप किया, कहा सच सच बताओ अभी तुम दोनों क्या बात कर रही थी। हमने बता दी, हम तो अच्छी बात कर रहे थे, बता दी। आज हम क्या कहते हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं आपको क्या मतलब है, यही बोलते हैं ना, आपको क्या मतलब है। ये हमारे मन को कमजोर करता है। क्या कारण है जो हमारा ये प्रश्न उठता है कि मैं शुभ चिंतन तो करती हूं उसका असर नहीं होता, उसका कारण क्या है? उसका कारण है मैंने अपने मन को व्यर्थ चिंतन से, पर चिंतन से कमजोर बनाया है। एक होता है मिसाइल, एक होता है छोटा सा पटाखा, वो मन जो कहीं भी पहुंच करके कुछ भी कार्य कर सकता है, उस मन की शक्ति को हम घटा देते हैं, कम कर देते हैं। कारण पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, जनरल कंप्लेंट्स। जब हम लोग सेवाओं पे जाते हैं, क्लासेस कराते हैं, क्लास को पूछते हैं किस बात पे कराएं, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ चिंतन किसने अलाउ किया? आप खुद कर रहे हो ना। और मीठे भाइयों बहनों, व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, शुभ चिंतन बैठ करके करने की चीज नहीं है कि मैं योग में बैठूं व्यर्थ को समर्थ में बनाऊं, ये योग की चीज नहीं है। ये हमारे चलते फिरते उठते बैठते उसकी चीज। मैंने शुभ चिंतन ही करना है, कुछ भी हो जाए। क्या हम अपने लिए, अपने साथ ये वायदा नहीं कर सकते? अच्छी चीज का प्रभाव होता है ज्यादा, पॉजिटिव है, नेगेटिव का प्रभाव भी पड़ता है अगर वो पावरफुल है तो। शुभ चिंतन से अगर वो पावरफुल है तो उसका प्रभाव पड़ेगा, 100% पड़ेगा। शुभ चिंतन से बाबा हम बच्चों को बदलता है। रोज की मुरली में देखो, हम बच्चे क्या भी हैं, कैसे भी हैं, मुरली में पहले पहले क्या कहता है? मीठे बच्चे। उसको पता है मेरी सभा में कड़वे भी बैठे हैं, मेरी सभा में ऊट पटांग बैठे हुए हैं, उसको पता है, फिर भी क्या कहता है? मीठे बच्चे। मीठा मीठा कहकर हमें बदल दिया। बाबा, बाबा का कार्य हमारे सामने एक प्रमाण है। जिस विधि वो करता है वो विधि फॉलो फादर के रूप से अपनानी। हम कहते बाप समान, हम हैं कौन? कौन? बाबा के बच्चे। हम रावण की संतान नहीं है, हम माया की संतान नहीं है, भगवान की संतान। तो भगवान के बच्चे कैसे होंगे? हर एक के पास अनुभव होगा। शुभ चिंतन से हम आत्मा को कैसे बदलते हैं, वातावरण को कैसे बदलते हैं। रामलीला ग्राउंड 1973 जब मेला लगा था, सब तरफ से नेगेटिव था, सब तरफ से। इंदिरा गांधी स्टेडियम, डायमंड जुबली, सब तरफ से नेगेटिव था। जिस ऑफिसर को बोलो नेगेटिव, जिसको बोलो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, परंतु आदरणीय दादी जी, दीदी जी, आपको संकल्प ही नहीं लाना है कि हमने स्थान बदली करना है। वो शुभ संकल्प की दृढ़ता जो दादियों ने उस समय दिखाई और सिखाई, कार्यक्रम कितना सफल हुआ आज हम याद करते हैं। अगर एक घटना हो सकती है, दो घटनाएं हो सकती हैं, क्या इसको हम नेचुरल नेचर नहीं बना सकते? अगर मैं पूछूं इस सभा में कितने हैं जिन्होंने पिछले एक सप्ताह में बिल्कुल पर चिंतन नहीं किया, वो हाथ खड़े करो। कितने थोड़े, कितने थोड़े हैं। आज आपकी छोटी बहन के नाते एक रिक्वेस्ट, हम मधुबन आए हैं, ये तीर्थ स्थल है, आबूराज सर्वोच्च तीर्थ जहां भगवान आता है, जहां भगवान की मेहर बरसती है, उस दरबार में हम बैठे हुए, क्या हम ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं कि हम कभी भी पर चिंतन नहीं करेंगे? दादियां हमको कहती थीं, आपने पर चिंतन नहीं किया, लेकिन आप उस मंडली में बैठे, आपने बोला कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे सिर हिलाया, तो आप भी उसमें चले गए, आपके भी नंबर बन जाते हैं। तो क्या आज की ये सभा बाबा को ये सौगात दे सकती है कि हम कभी भी पर चिंतन नहीं करेंगे? आज की क्लास से क्या हम ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं कि हम पर चिंतन नहीं करेंगे? जो कहते हैं हां जी, वो हाथ उठाओ। जिनके हाथ नीचे मैं समझूंगी उनकी करने की मर्जी है, सभी के हाथ ऊपर हैं। ऊंचे ऊंचे करो, ऊंचे ऊंचे हैं, देखो वीडियो निकल रहा है, बाबा वीडियो निकाल रहा है। सच में हम खुद को तो सुधार लें, तब हम दूसरों को देखें। मैंने अपना फोकस, और समय अभी ऐसा है, समय अधिक नहीं है, समय ऐसा है जब अब मुझे केवल अपने ऊपर फोकस करना है, केवल अपने ऊपर। ठीक है, पक्का पक्का पक्का, बाबा पूछता ना, पक्का पक्का, कुछ तो सौगात दे के जाएंगे ना बाबा को, बाबा मिलन मुफ्त में थोड़ी करना है, कुछ तो भेंट चढ़ाएंगे ना, कुछ तो भेंट चढ़ाएंगे ना। हाँ जी, पंजाब वाली आवाज नहीं है, पंजाब की आवाज होनी चाहिए, कुछ तो भेंट चढ़ाएंगे ना। हाँ जी, हाँ जी, ओके, इन शब्दों से समाप्त करती हूँ। ओम शांति।
खुद को हम बदले इतना जब ये जाए बदल, खुद को हम बदले इतना जब ये जाए बदल, आत्म परिवर्तन कर ले विश्व परिवर्तन कर दे।
बदले इतना जब ये जाए बदल,
आत्म परिवर्तन।